ओम शांति। इस बाबा के बेहद के घर में हम सभी अपने आप को संसार से अलग अनुभव करते हैं, अलौकिकता से भरपूर अनुभव करते हैं, रूहानियत से संपन्न अनुभव करते हैं, एक प्योरिटी के वाइब्रेशन की महसूसता बनी रहती है, एनर्जी का फ्लो होता रहता है, संसार से हम विस्मृत हो जाते हैं, चाहे वो संबंध हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो भी रिश्ते नाते जिनके हम संबंध संपर्क में आते हैं। अगर इस मधुवन के महत्व को हम जानकर चलते हैं, उस अनुरूप पुरुषार्थ करते हैं, तो हमें योग लगाना नहीं पड़ता है। योग वास्तव में कोई लगाने की प्रक्रिया नहीं है, हमारा जीवन ही योगी है। योग एक मन को दिशा देने का नाम है, अपने विचारों को एक नई दिशा देना, यही योग है। जिस दिशा में हमारा उत्थान होता है, हमारी प्रगति होती है, आत्मा में शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, हम संसार की रूढ़िवादी परंपराओं से ऐसी मान्यताएं जो संसार को पतन की ओर ले जाती हैं या मानव जीवन को पतन की ओर ले जाती हैं, उन सब मान्यताओं को दरकिनार करने की शक्ति योग से मिलती है। तो योग अर्थात मन को नई दिशा देना, जिस दिशा में हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहे, आत्मा प्रफुल्लित रहे, आत्मा ज्ञान योग के पंखों से उड़ती रहे, हमेशा नई नई उड़ान भरती रहे, देह से डिटैच होने की अलग अलग अनुभूतियां करती रहे। क्योंकि वास्तव में हम सबका एकमात्र पुरुषार्थ है निरंतर आत्म अनुभूति। जैसे ही हम देह की स्मृतियों में रहते हैं, तो निरंतर एक अंदर में नकारात्मक वृत्तियां बनी रहती हैं, देह की वेदनाएं, देह की पीड़ाएं, देह के बंधन, देह की उदासी, संबंध, ऐसी विचारधाराओं से मन जो है बंधा रहता है, जकड़ा जकड़ा सा रहता है, मन जैसे स्टिफ हो जाता है, एकदम जकड़ जाता है, चिंतन चलता ही नहीं है, एक चिंता की निरंतर एक मानसिकता बनी रहती है, कोई ना कोई सूक्ष्म चिंताएं, चाहे वो अपने पुरुषार्थ की चिंताएं बनी रहती हैं, तो योग को वास्तव में समझना, योग है क्या चीज। जितने भी हम पुरुषार्थ करते हैं, मुरलियां सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, चिंतन करते हैं, अपने जीवन को योगी जीवन बनाने के लिए निरंतर हमारा योग लगा रहे, टूटे ना। जैसे बाबा कई दफा कहते हैं, तुम बैठे बैठे योगी नहीं हो, तुम एक घंटे के योगी नहीं हो, दो घंटे के, चार घंटे के योगी नहीं हो, आठ घंटे के योगी नहीं हो, तुम निरंतर योगी हो। तो योग को अर्थात अपने मन को नई दिशा देनी है। कैसी दिशा देंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्योंकि दिशा को निर्धारित करने के लिए पहले हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए, मन में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है और हमें रास्ता ही पता नहीं है, पूछ पूछ के जा रहे हैं, तो वो एक समय, जितना समय, अगर हम को यहाँ से 10 घंटे में पहुँच जाएंगे तो पूछते पछाते हम 16 घंटे में पहुँचेंगे, 6 घंटे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। उस 6 घंटे में हम और भी कुछ कर्तव्य कर सकते थे। तो योग के बारे में बाबा ने बहुत क्लियर बताया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम योग को अलग अलग परिभाषाओं में बांध देते हैं, चाहे वो अपनी परिभाषाएं हो या किसी की क्लासेस सुनते हैं या संसार के लिटरेचर के माध्यम से। सुनते सुनते हम एक भ्रमित हो जाते हैं, हमको करना क्या है, एक भ्रमित मानसिकता में जीते रहते हैं। तो योग की क्लैरिटी चाहिए, और बाबा ने योग को बहुत रमणीकता से अलग अलग भाषाओं में परिभाषित किया है। अप्रैल और मई महीने में जो मुरलियां चली थी, तपस्या की मुरलियां थी, सारी वो योग से संबंधित थी, सारी योग से रिलेटेड थी। और बाबा ने उसमें तपस्या के बारे में बताया, तपस्या अर्थात मौज मनाना, तपस्या अर्थात समारोह, तपस्या अर्थात उत्सव, तपस्या अर्थात खाना गाना नाचना मौज मनाना, तपस्या अर्थात खुशी। ये तपस्या की परिभाषा है, और ये सारी चीजें संकल्पों को नई दिशा देने से प्राप्त होंगी। तो जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारे विचार हैं, कहीं ना कहीं उनकी गति धीमी पड़ गई है। कौन से? सकारात्मक संकल्पों की, शुद्ध संकल्पों की, शक्तिशाली संकल्पों की, पवित्र संकल्पों की, रूहानियत वाले संकल्पों की, एनर्जेटिक संकल्पों की। ऐसे संकल्पों का अभाव होने से ही हम योग की गहरी अनुभूतियां नहीं कर पाते हैं, और एक दूरी बनी रहती है, बाबा से दूरी और अपने आप से भी दूरी बनी रहती है। जो हमारा ओरिजिनल बाबा स्वरूप कहते हैं, तुम बच्चे अपनी संपूर्णता को याद करो, तुम परमधाम में कैसे थे वो याद करो, सत्ययुग में कैसे अवतरित हुए तो वो याद करो। तो ऐसे शक्तिशाली, पवित्र, शुद्ध, श्रेष्ठ, उमंग उत्साह वाले, एनर्जी वाले संकल्पों के अभाव से हमारा जो योग है बहुत थोड़ा कच्चा सा रहता है, उसमें परिपक्वता नहीं आती है। जैसे ईंट को तपाना होता है तो अच्छी आग चाहिए उसके लिए, और अच्छी आग में ईंट जो पकेगी तो वो एकदम कड़क ईंट हो जाएगी, उसको फिर कोई भी चोट तोड़ेगी नहीं। अगर ईंट कच्ची रह जाती है तो वो टूट जाती है। ऐसे ही अगर हमारे संकल्पों रूपी लकड़ियाँ जो शक्तिशाली नहीं है, अग्नि वाली नहीं है, जो प्रज्वलित नहीं हो रही हैं, केवल धुआं निकल रहा है, तो वो ईंट कच्ची रह, अर्थात हमारी स्थिति कच्ची रह जाती है। योग हमारा फिर टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, इसी में हमारा टाइम फिर जाता रहता है। और जो एक सार्थक परिणाम हमें महसूस होना चाहिए, एक शक्तिशाली अनुभूति होनी चाहिए, जो मन में रोमांच खुशी के बाबा कहते बाजे बजते रहें, वो नहीं बजते। फिर बाजे तो नहीं बजते लेकिन 12 बज जाते हैं वैसे ही। कल की मुरली में था ना, बाजे बजते रहना चाहिए, कल या परसों था मुरली में। तो इसके लिए पहले हमें अपने मन को भरपूर रखना है, क्योंकि संसार जिस दिशा की ओर जा रहा है, ऐसे संसार में विचारों का प्रभाव है, संकल्पों का प्रभाव है। जो हम देख रहे हैं संसार में कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, कैसी विचारधाराओं वाले मानव हैं जो कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। शरीर के 35 टुकड़े, कितनी बड़ी बात है ये, कैसी मानसिकता है ये, और इसके जिम्मेवार कौन है? हम पूर्वज आत्माएं। बाबा ने कहा तुम फाउंडेशन हो इस सृष्टि के, आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो, इस संसार का बेड़ा पार लगाने वाले हो। अर्थात हमारे योग की शक्ति की किरणें उन आत्माओं तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके मन को परिवर्तन करने के लिए शक्ति नहीं भर रही है, नहीं तो पेड़ के जड़ों में जो पानी डाला जाता है वो तो अंतिम पत्ते पर भी उसका असर होता है। तो बाबा कहते हैं तुम तो संसार की जड़ें हो, कल्प वृक्ष की जड़ें हो, फाउंडेशन हो, तना हो, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेवारियों को भूले हुए हैं और उस भूल का खमियाजा संसार की आत्माओं को भुगतना पड़ रहा है। तो क्या हम अपने प्रति इतने सचेत हैं, जागरूक हैं, ऐसे स्वयं के प्रति, स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति या टाइम को सफल करने के प्रति ऐसे संकल्प चलते हैं कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, या पुरानी दिनचर्या अनुसार पुराने संकल्पों से ही योग लगा रहे हैं, जैसे सामान्य दिनचर्या बनी है संकल्पों की दिनचर्या, सवेरे अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, ब्रह्मा भोजन भी किया, सेवा भी की, आपस में ज्ञान का चिंतन भी किया, मनन भी किया, क्लास भी की, बाबा की याद में चार्ट भी लिखा, सो गए और पूरा हो गया काम। बाबा कहते तुम अनन्य बच्चे हो जो संसार की कोई अन्य आत्मा कर ना सके, और सारा काम संकल्पों के स्तर पर है, क्योंकि हम संसार की सब आत्माओं तक स्थूल रूप से तो पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा संकल्प अगर शक्तिशाली है, श्रेष्ठ है, पावरफुल है, एनर्जी वाला है, रहम दिल वाला है, किसी को परिवर्तन करने की मानसिकता वाला है, शुभ भावनाओं से भरा हुआ है, कल्याणकारी है, सुख देने वाला है, दुख हरने वाला है, तो निश्चित तौर पर उन आत्माओं तक पहुंचेगा। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, तुम्हारा धंधा कौन सा है? सबका भला करना, लेकिन उससे पहले अपना भला करना। अपना भला करो तो ही दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी बहुत धोखा देते रहते हैं। पहले से ही जन्म जन्म के ऐसे संकल्प, कर्म, बोल, उनका बोझ, वो आत्माओं से दबी जा रही है, और इस संगम युग पर वो हम सब भूलकर नई स्मृतियां, वो वाली स्मृतियां जो नकारात्मक व्यर्थ संकल्पों की, बैर विरोध की, घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष, छल कपट धोखा, ऐसी स्मृतियों से हम अपने आप को और ही बोझिल बनाते जा रहे हैं, इसलिए तो उड़ान भर ही नहीं पाते हैं, इसलिए योग में स्थिर ही नहीं रह पाते हैं। मन भाग रहा है, चंचल है, शरीर स्थिर नहीं हो रहा है, क्यों आकर? अर्थात हम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों के पुरुषार्थ को अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति उतनी निगाह, घर परिवार वालों को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने को क्या, जिस गति से बदलना चाहिए या जिस दृष्टि से हमको भगवान देखना चाहता है, बाबा देखना चाहता है, क्या ऐसे हमारा स्वयं के प्रति विचार चलते हैं, या केवल सोच लेते हैं मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूं? पहला कदम तो सोचना ही है, लेकिन आगे उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो हमारा जो जीवन है एक निरंतर योगी जीवन हो जाए, उसके लिए मन बुद्धि को भरपूर रखना है, ज्ञान से भरपूर, परमात्म शक्तियों से भरपूर, गुणों से भरपूर। मन को खाली रखा तो खाली मन, सब जानते हैं, शैतान का घर। इसलिए बाबा कहते बिजी रहो, अभी लास्ट तारीख 17 तारीख को मुरली चली ना, बाबा ने कहा अमृत वेले बच्चे बैठते हैं, बच्चे कोई कोई बच्चे हैं जो साधारण में साधारणता में व्यतीत करते हैं, कोई कोई लाइट हाउस माइट हाउस में बनकर भी बैठते हैं, अमृत वेले को पूरा सफल करते हैं, शक्तिशाली अनुभव करते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे मनन चिंतन करते हैं, लेकिन उसको दिन में मनन चिंतन करो, क्योंकि हमारी दिनचर्या प्रभावित होती है दिन में जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं। अमृत वेला अच्छा कर लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो वातावरण हमारे अनुकूल है, पूरा संसार सोया पड़ा है, संसार के विचार दबे हुए हैं, उस समय उनको जरूरत नहीं है। जरूरत तो उनको उन आत्माओं को तब होती है जब वो आत्माएं भी कर्म क्षेत्र पर आती हैं, और कर्म क्षेत्र पर हम खुद ही स्थिति भी डावाडोल हो रही है, हमारी मानसिकता बड़ी कमजोर हो गई है, किसी ने कुछ बोला तो हम हलचल में आ गए, तो उन आत्माओं का क्या होगा। हमारे संकल्पों का प्रभाव, बाबा कहते हैं अगर तुम बच्चे दुखी तो संसार दुखी, तुम सुखी तो संसार सुखी। घर में माँ बाप दुखी हो तो बच्चे सुखी रह सकते हैं? पूरा असर उनके ऊपर होगा। एक भी व्यक्ति घर में अगर दुखी हो तो उसका असर पूरे घर पर होता है, और एक भी बच्चा घर में पूरा खुश रहता हो, प्रसन्न रहता हो, उसका असर भी सबके ऊपर होगा। तो हम तो संसार को नई रोशनी देने वाले हैं, खुशी प्रदान करने वाले हैं, तो हमारे मन बुद्धि कितना भरपूर होना चाहिए, खुशी से भरपूर, परमात्म प्यार से भरपूर, वो परमात्म प्यार के वाइब्रेशन निरंतर प्रवाहित होते रहे। तो इसके लिए हमें अपने योग को रमणीक बनाना है। तो जब हमें सवेरे कहा गया क्लास के लिए तो टॉपिक तो पहले कुछ और सोचा, फिर दोपहर को कुछ और सोचा, शाम को कुछ और सोचा, और योग में सोचते हुए तो कुछ और ही सोच गया। जो हमने देखा शाम को हम बैठे खाली बुद्धि होकर बैठ गए, सोचा जो बाबा कराएगा वो ठीक, वही ठीक रहेगा, और जो हम प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में होता है वास्तव में वही होता है। तो हम 28 प्रकार के योग देखेंगे, वैसे तो बहुत तरह के हैं लेकिन 28 प्रकार के, और चिंतन कैसे करना है उसकी एक विधि है ये, क्योंकि हम चिंतन हमारा बढ़ता नहीं है, चिंतन को अलग तरीके से करना है जो सहज भी हो और स्वाभाविक भी हो जाए। अगर चिंतन नहीं है तो योग में हमारा मन रुक जाता है, ठहर जाता है, और पानी ठहर गया तो उसमें मक्खी मच्छर पैदा होंगे। अगर हमारा मन योग में चिंतन नहीं कर रहा है, हाँ चिंतन करते करते एक अवस्था आएगी जब हम बाबा के प्यार में खो जाएंगे, उस समय वो चिंतन रुक जाएगा, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए चिंतन अति आवश्यक है। इसलिए हमारा योग है वो ज्ञानमय योग है। सीधा गए बैठ के आंखें बंद करके बाबा को देखते रहे, इतनी शक्ति नहीं आएगी। हाँ अगर पहले से चिंतन करके गए हैं और बैठ गए तो वो अनुभव हो सकता है। अगर हम सोचा कि ठीक है हमको 6:30 से 8-1.5 घंटा योग करना है, केवल इसी संकल्प के साथ गए, तो उस 1.5 घंटे में पता नहीं 1.5 मिनट भी योग लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए उठने की फिराक में रहते हैं। और वास्तव में जिसका योग अच्छा लगता है उसका योग के बाद उठने को मन नहीं करेगा, और योग ठीक नहीं लगा तो पता चल जाता है हलचल में आ रहे हैं, या जैसे बाहर निकले तो बातें चालू हो गई हैं, फोन चालू हो गया है, भोजन के बारे में सोच रहे हैं, बाबा क्या कहते हैं पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी। और वास्तव में सही बात है, अगर योग से मन हमारा तृप्त है, ज्ञान की खुशी है, तो खुशी में भूख बड़ी कम लगती है, भूख लगती है अर्थात खुशी हमारी कम है, ज्यादा खाते हैं अर्थात दूसरा व्यर्थ का बहुत कुछ खाया हुआ है हमने, और जो व्यर्थ का खाया हुआ है वो हमारे भोजन को वो खा के चला जाता है, इसलिए व्यर्थ पोषित होता रहता है, व्यर्थ को पोषण मिलता रहता है। सारे दिन में चाहे देखना चाहे बोलना चाहे कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, वो एनर्जी हम किस तरीके से दूसरों से ले रहे हैं। अगर दूसरे को हम देह की दृष्टि से देख रहे हैं तो हम जैसे अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी एग्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं या बहन भाई की दृष्टि से देख रहे हैं या फरिश्ता दृष्टि से देख रहे हैं या फिर परम धाम की स्थिति उससे देख रहे हैं, एक सेवादारी के रूप में देख रहे हैं, इष्ट देव इष्ट देव के रूप में, तो एनर्जी हम जमा कर रहे हैं। सूक्ष्म रूप से वो मन शक्तिशाली होगा। तो हम देखेंगे 28 योग, 28 30 या 26 जितने भी होंगे। तो सबसे पहले है योग में हम जब बैठते हैं तो पहले से प्लानिंग करनी है। तो जैसे हम देखेंगे ए बी सी डी के आधार से चिंतन करना है तो इस तरीके से कीजिए। और सबसे पहले चिंतन करने के लिए एक डायरी लीजिए, डायरी में ए बी सी लिख दीजिए। और जब हम मुरली सुनते हैं तो उसके आगे ए से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। कितने शब्द होंगे? हजारों शब्द मिल जाएंगे। वो शब्द लिखते लिखते आप उस अवस्था का अनुभव करने लगेंगे। ए से अशरीरी, आसक्त अनासक्त, आत्म स्वयं, आत्म सम्मान, आत्म विश्लेषण, फिर हमारा उसके आगे जो हमने लौकिक में पढ़ाई पढ़ी है वो उससे जुड़ता जाएगा साथ साथ में। आत्मा से संबंधित आत्म विवेचन, वो पढ़ाई फिर सारी लौकिक पढ़ाई अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगी। तो सबसे पहले है, पहला है आह्वान करना। योग में जैसे बैठते हैं, अभी दो दिन बाद मुरली आएगी, एक शायद 24 तारीख या 23 तारीख की होगी, बाबा ने कहा तुम शक्तियों का आह्वान करते हो जब बाप की याद में बैठते हो, अर्थात तुम शक्तियों का आह्वान करते हो। तो अभी सभी अलर्ट होकर बैठेंगे और सभी महसूस करेंगे, आंखें बंद, और जैसे महसूस करेंगे ये जो चारों दरवाजे हैं, है ना, महसूस करना कि इन चारों दरवाजों से परमात्म शक्तियाँ फुल फोर्स से आती जा रही हैं। जैसे बाढ़ आती है कैसे घर को एकदम लेके चली जाती है, पानी कैसे घुस जाता अंदर, पहाड़ी से पानी अगर जोर से फुल फोर्स से आए और घर के अंदर में घुस जाए तो क्या होता है, पूरा तहस नहस कर देगा। तो महसूस कीजिए कि इन चारों, इस हिस्ट्री हाल के चारों दरवाजों से परमात्म शक्तियों की शक्तिशाली किरणें फुल फोर्स से आती जा रही हैं और वो सारी किरणें सीधा मेरे मस्तक में प्रवेश कर रही हैं और अंदर से जितने भी व्यर्थ के नेगेटिव है सारे वो बाढ़ में बह गए हैं एकदम। केवल मैं आत्मा जिसे बाढ़ कुछ नहीं कर सकती है, जिसे जल गीला नहीं कर सकता है, मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ और उसको शस्त्र कोई काट नहीं सकता, उसको अग्नि जला नहीं सकती, मैं एकदम निडर हूँ। तो वो सारी शक्तियाँ परमात्म शक्तियाँ जैसे मुझ आत्मा में समा गई हैं, मुझे एक नया जन्म मिला है, स्पष्ट मैं अनुभव कर रही हूँ, स्वयं का अनुभव, आत्मा का अनुभव, एकदम प्रकाशवान शक्तिशाली लाइट, चमकता हुआ सितारा, एकदम आकर्षण मूर्त, खुशनुमा मुस्कुराता हुआ सितारा, वो सारी परमात्म शक्तियों परम धाम से अवतरित होके इन चारों दरवाजों से आ रही हैं और सीधा मेरे मस्तक में जाती जा रही हैं और मैं आत्मा परमात्म शक्तियों से परिपूर्ण हो गई हूँ, चार्ज हो गई हूँ, मुझे नया जन्म मिला है। इस शरीर में अभी अभी जैसे मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं अभी अभी अवतरित हुई हूँ, वो परम धाम की सारी एनर्जी मुझ में समा गई है। ओम शांति। तो ये पहला आह्वान करना, यह है परमात्म शक्तियों का आह्वान। दूसरा, कल भी क्लास में बताया था कि जो हमारी दूसरी शक्तियाँ जो हमको कर्म क्षेत्र पर जिनकी आवश्यकता पड़ती है, अचानक आवश्यकता पड़ जाती है, कहाँ जजमेंट करना है, कहाँ परखना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, कहाँ समाना है, कहाँ समेटना है, कहाँ कंट्रोलिंग करना है, कहाँ नियंत्रण करना है उस चीज़ को, रूलिंग पावर, वो शक्तियों की लिस्ट बनाओ, तैयार करो अपने आप, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ अकेले और मुरलियाँ पकड़ लो, सब है उसमें पड़ा हुआ। या फिर वो बताया डायरी में लिखते जाओ, एक साल के बाद देखेंगे जब भी शक्तियों की बात आती है वहाँ लिख दो उसको, चाहे वो किसी के क्लास के द्वारा मिल रही है चाहे मुरलियों के माध्यम से, देखेंगे 6 मास के बाद आपके पास 100 शक्तियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। पुरुषार्थ वास्तव में करने की जरूरत नहीं है, तो पुरुषार्थ से मुक्त होने की जरूरत है। हम तो बिना मतलब पुरुषार्थ पुरुषार्थ करते 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 आत्मा थक गई है, जैसे अभी पुरुषार्थ से मुक्त होना है। पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, बहुत सुस्वत है। पुरुषार्थ किसी चीज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमारे पास तो ऑलरेडी है ही सारा कुछ। बाबा ने बोला तुम्हें मैंने जन्म से ही सारा कुछ अपना दे दिया है, अब जे दे दिया तो पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है। लेकिन उसकी विस्मृति रखना ही पुरुषार्थ। विस्मृति होती है तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर स्मृति है, पुरुषार्थ शब्द ही बहुत भारी कर देता है। पुरुषार्थ जिसमें मेहनत लग रही है, मेहनत का शब्द है। कल मुरली में था, भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। तो मोहब्बत में पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। माँ को बच्चे से प्यार है तो उसके भोजन बनाने के पुरुषार्थ करती है वो, नहीं, उसमें प्यार भरा हुआ है, उसमें अपनापन भरा हुआ है, स्नेह भरा हुआ है, उसमें पावर भरी हुई है, शक्ति भरी हुई है। उस बच्चे की पालन पोषण करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शुभ भावनाएं भरी हुई है। वहां पुरुषार्थ की बात ही नहीं है। तो सबसे पहला कौन सा योग करना है? आह्वान, ए से आह्वान। तो ऐसे आह्वान अगर सोचे तो आह्वान, बहुत सारी बातों का आह्वान किया जा सकता है। दूसरा ब्लेसिंग योगा, वरदान। जब भी हम बाबा की याद में बैठे हैं, या ऑफिस में बैठे हैं, या सेवा कर रहे हैं, या रोटियां बना रहे हैं, वो सारे उसको वरदान में कन्वर्ट कर दो। रोटी को वरदान में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे वरदान कन्वर्ट करेंगे? बाबा के लिए भोग बना रहे हैं, और नए शब्दों में, क्योंकि ये तो हमने बहुत बार सुना है। दूसरा अपनी शब्दावली को बढ़ाना। क्या होता है, शब्दों के अभाव में हम गहरे अनुभव नहीं कर पाते हैं। शब्दों का अभाव है, हम बाबा से लंबे समय तक बात नहीं कर पाते हैं। बस मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, परम धाम से आया हूँ, बस वो 5-7 सेंटेंस होते हैं, उसके बाद बुद्धि ठहर जाती है। बच्चों को पढ़ाते हैं एक शब्द के ऊपर वाक्य का प्रयोग करो, उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करो। तो ऐसे रोटी को वाक्य में प्रयोग करो, और उसमें योग के शब्द होने चाहिए। कौन से? अभी 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 करो। मैं सृष्टि चक्र का गोला बना रही हूं, और सुदर्शन चक्रधारी हूं, और शिव बाबा की सारी शक्तियां इसमें समाती जा रही हैं। ये ब्रह्मा के भंडारे की, भंडारा किसका है और भंडारी किसकी है? कुछ दिन पहले था, अभी अभी सोचा, पहले आया था ना मुरली में, भंडारा किसकी कहेंगे, भंडारा किसका है और भंडारी किसकी है? ब्रह्मा का भंडारा है, शिव की भंडारी। तो ये ब्रह्मा के भंडारे से बनी हुई रोटी जिसके मुख में जाएगी, वो उसके चारों खाने चित्त हो जाएंगे। किस में? बाबा की प्यार में। ऐसे ऐसे रोटी से संबंधित 20 सेंटेंस लिखो, वहां सोच, वहां रोटियां बनाते बनाते लिखो, क्योंकि चिंतन को बढ़ाना है, शब्दावली को बढ़ाना है। शब्दों का अकाल पड़ा हुआ, अगर शब्दों के अकाल की अकाल है, शब्दों का अभाव है, तो फिर हमारा योग लंबे समय तक नहीं चलता है और चिंतन में नहीं चलेगा। तो ब्लेसिंग योग, वरदान, अर्थात वहां बैठे बैठे भी सोचना है कि ये रोटियां वरदानी रोटियां, जो भी खाएगा हर आत्मा वरदानी बन जाएगी। सेवा करते हुए, सब्जी काट रहे हैं, सब्जी बनाते हुए सोचे जो भी इसको खाएगा वरदानी मूर्त बन जाएगा। दूसरा उसमें सोचो कि जैसे बाबा का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है, और बाबा कह रहे हैं निस्वार्थ सेवा, सेवाधारी बाबा, निमित सेवाधारी बाबा, निष्काम सेवाधारी बाबा, निर्माण चित सेवाधारी बाबा। आज के मूल्य में थे निर्माणता, कहाँ था? वरदान में था। तो शब्दों को कन्वर्ट कर देना है, जरूरी हमको हूबहू उसको याद रखना है। तो दूसरा हो गया ब्लेसिंग योगा, तीसरा बाथिंग योगा, स्नान करते हुए भी योग हमारा लगा रहे। तो क्या करेंगे उसमें? स्नान कर रहे हैं जैसे, ये कौन सा ज्ञान जल ऊपर से जैसे अमृत टपक रहा है, क्योंकि इष्ट देव इष्ट देवी हूं, तो ऊपर से जैसे ज्ञान अमृत है, अमृत की बरसात हो रही है, और वो सारा जल मेरा पूरा संपूर्ण शुद्धिकरण हो रहा है, आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो रहे हैं। जैसे वो पानी ऊपर से पड़ रहा है, आत्मा अलग अनुभव कर रहा हूं और ये शरीर अलग अनुभव कर रहा हूं। तो बाथिंग स्नान करते करते भी हमारा योग बढ़ जाएगा, टूटेगा नहीं वो, क्योंकि योग स्नान करते जाएंगे या दूसरे कर्म में जाएंगे तो योग हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि विचार चेंज होगी सारे। तो दूसरा योग है स्नान करते हुए बाथिंग योग या ब्लेसिंग योग और बॉडी लेस योग अशरीरी बनने का। और तीसरा है चर्निंग योग, चिंतन करना है। बाबा के ज्ञान का चिंतन करते करते योग किससे लगा रहता है? बाबा से लगा रहता है। तो चर्निंग को बढ़ाना है, क्योंकि अगर चिंतन को हम बढ़ाते नहीं है तो क्या होता है, बुद्धि डल हो जाती है। भगवान के बच्चे डल हेड हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। जो उसका सारा ज्ञान है वो तो उसने सब दे दिया है, लेकिन हमने उसको लिया नहीं है पूरी तरह से। बस कोर्स कर लिया, बीके बन गए, मुरलियां सुन रही है, लंबे समय से ज्ञान में चलते जा रहे हैं, इससे कुछ परिवर्तन थोड़ा होने वाला है। चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा, चिंतन के अंदर में आग लगनी चाहिए और वो धीरे धीरे लगेगी, उस आग को प्रज्वलित करना है। तो चर्निंग को बढ़ाना, अपने शब्द कोश को बढ़ाना है। तो तीसरा है चर्निंग योग। चर्निंग योग में क्या करेंगे, चर्निंग करते करते बाबा को किसी भी तरीके से याद करो, बाबा के, बाबा ने मुरलियों में याद से संबंधित क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में चिंतन करो, या सबका भला कैसे कैसे हो सकता है, कर वाला हो वाला ये लिख लो ऊपर, उसके ऊपर 20 पॉइंट निकालो उसके ऊपर चिंतन। मैं स्वयं का भला कैसे करूं, बाबा ने बोला पहले अपना भला करूं, तो अपना भला कैसे करूं, उस पर ऐसे लिखो, निबंध करो, 10 सेंटेंस लिखो। तो तीसरा चर्निंग होगा। चौथा है डेथ होगा। बाबा कहते तुम हो मरजीवा। तो सोचना है जब हम मारी गए संसार से तो हमारे पर असर क्या होना चाहिए संसार का। और जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वहां सन्नाटा हो जाता है, और जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सबकी मानसिकता कैसी होती, वैराग्य वाली हो जाती है। कैसे विचार होते हैं कि हम कोई संसार में, हमको इस संसार से भी एक दिन जाना ही जाना है, क्या लेना है इस संसार से भी। तो डेथ योग अर्थात ये भी बॉडी लेस योग है, कि मैं जैसे शरीर से डिटैच हो गया हूँ, शरीर देखना सामने पड़ा हुआ है और मैं आत्मा साक्षी होकर एकदम सूक्ष्म शरीर से देख रही हूँ उसको, क्योंकि एक दिन तो छोड़ना ही है, पहले से इस शरीर से निकलने का अभ्यास करना है। जहाँ बैठे हैं योग करते हैं, बैठे भले शरीर से, उस जिस स्थान पर बैठे शरीर से, उस स्थान से मन बुद्धि से हट जाना है। कहाँ बैठना है, यहाँ बैठे बैठे सोचो मैं सीधा बाबा के कमरे में बैठी हूँ, वहां जाके खटिया से नहीं लगाना है, मन से खटिया से आप टेक लगा दो भले। नहीं तो वहां जाके क्या करते हैं, कभी पिल्लों को स्पर्श कर रहे हैं, कभी खटिया को स्पर्श कर रहे हैं, कभी बाबा के चित्र को स्पर्श कर ले, रोकेंगे सारे नेचुरिया रोकेंगे, लेकिन मन से तो नहीं रोक सकता कोई भी। मन से जाओ वहां, मन से कोई नहीं रोकेगा। बाबा ने कहा सूक्ष्म मतन में आ जाओ, कोई तुमको रोकेगा नहीं। यहां पर तो स्टेज पर जाने से कोई भी रोक सकता है, कल की मुरली में था, स्थूल में भले पास में रहते हैं लेकिन स्थिति में समीप नहीं है तो साथ में नहीं जा सकते हैं। तो सारा खेल मन का है, जहां हम बैठते हैं वहां उस स्थान पर बैठ के योग लगाना नहीं है, वहां से हमको अब्सेंट हो जाना है, वहां से मन से दूसरे स्थान पर चले जाना है। जो स्थान स्थूल देखें, चाहे वो चार धाम है, चाहे ओम शांति भवन, डायमंड हॉल, ज्ञान सुबर बाबा का कमरा, पीस पार बाबा का कमरा, म्यूजियम बाबा का कमरा, या जितने भी सेवा स्थान पर है, ऐसे सोचो कि संसार में जितने भी बाबा के घर बने हुए हैं या बाबा के चित्र पर लगे हुए हैं या बाबा के सेंटर हैं, सब जगह मैं यहाँ से निकल हजारों लाखों फरिश्ते मेरे से निकल कर और सभी जगह बैठ के साधना कर रहा हूँ। तो ये डेथ योगा होगा चौथा, अर्थात शरीर से डिटैच। पांचवा ईटिंग योगा। भोजन तो सब करते हैं ना, तो ईटिंग योगा, एक एक गिट्टी में जैसे परमात्मा शक्तियां भर देनी है उसमें, क्योंकि भोजन कैसे बन रहा है, किन विचारों के साथ बना रहा है कोई देख थोड़ा नहीं, हम वो सारे वाइब्रेशन उसमें जा रहे हैं। तो जब भी हम भोजन की गिट्टी ग्रहण करते हैं, वो संकल्प किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, उस संकल्प के साथ ही कोई ना कोई, उस गिट्टी के साथ कोई ना कोई संकल्प जोड़ देना है कि मैं ये भोजन परमात्म ऊर्जा से भरी हुई एक गिट्टी का स्वीकार, गिट्टी को स्वीकार कर रहा हूं, एनर्जी ग्रहण कर रहा हूं, कोई भी सामान उसमें जोड़ सकते हैं। तो ईटिंग योगा। नेक्स्ट है फरिश्ता योगा। फरिश्ता बनकर प्रक्रिया करनी है, और फरिश्ता वाले जो बताया डेथ योगा, फरिश्ता अर्थात क्या, हम अपने इस स्थूल शरीर से डिटैच होकर सूक्ष्म शरीर से संसार की प्रक्रिया करते हैं, हर संकल्प के साथ हमारा फरिश्ता शरीर का निर्माण होता है, हर संकल्प के साथ जो भी हम संकल्प करते हैं, जैसे अभी अभी हम बैठे कहते हैं आप सभी अपने अपने घर में पहुंच जाओ, जैसे हमने घर शब्द बोला कभी सभी कहां पहुंच गए, और घर के साथ साथ कितनी स्मृतियां जुड़ी हैं, एक सेकंड में सारे उसके प्रभाव डाल दिया उसने ऊपर। इसलिए बाबा ने क्या कहा, फरिश्ता बनकर कभी ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, कभी अमेरिका में, कभी अफ्रीका में, तो सारे देश जितने में उन देशों को याद करने का, कितना टाइम तो हमको उसमें चले जाएगा। कितने देश हैं संसार में, भी कितने देश हैं, 188 है, हाँ 230 से ऊपर ही हैं। तो सबके याद करना कितना पुरुषार्थ है। तो छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़ देते हैं आजकल, देखो कितनी जनरल नॉलेज है। तो कौन सा योग था, ईटिंग योगा, फरिश्ता योगा होगा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग क्या कहेंगे इसमें, मैं ज्वालामुखी योगी हूं, उसके आगे क्या है जी, परमधाम में स्थित हो जाओ, बिल्कुल। और जैसे परमधाम में एकदम आग की रोशनी कितनी होती है, और मैं आत्मा सीधा वहां पहुंची। अब आग में व्यक्ति खाक हो जाता है तो कुछ रहता नहीं, बचता नहीं है कुछ भी। तो जैसे मैं आत्मा परमधाम में पहुंची, इस संसार की सारी विस्मृतियां जैसे जलकर नष्ट हो गई हैं, क्योंकि हम इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। वहीं बाबा से जैसे एक ज्ञान सूर्य है, और ज्ञान सूर्य को हाथ लगाने से क्या होता है, जल जाते हैं। तो वो ज्ञान सूर्य, तो आत्मा तो जलेगी नहीं, लेकिन वो सारी आत्मा के ऊपर जो देह की स्मृतियां हैं, देह के संबंधों की स्मृतियां, देह के पदार्थों की स्मृतियां, या जो विकारों की वासनाओं की स्मृतियां, वो सारी जलकर खाक हो जाएंगी। तो सीधा बाबा को जैसे पकड़ लिया जाके ऊपर जाके, जैसे मैं आत्मा चिपक गई जाके। तो नेक्स्ट कौन सा योग हो गया, ज्वालामुखी योग। नेक्स्ट है हीलिंग योगा। हीलिंग योगा कैसे होता है, जैसे बैठे हैं तो सोचना है कि जैसे मेरे हाथों से बहुत शक्तिशाली करंट, एक हीलिंग, एक वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और जैसे सूक्ष्म में अपने हाथों को फेरने की जरूरत नहीं है, जैसे सूक्ष्म में, या ऐसे भी सोच सकते हैं बाप दादा सूक्ष्म रूप से जैसे मुझे अपनी नज़रों से हील कर रहे हैं, या बाबा के वरदानी हाथ मुझे हील कर रहे हैं, या मेरा संपूर्ण जो रूप है वो मुझे हील कर रहा है, अर्थात शफा दे रहा है, राहत दे रहा है, मेरे संकल्पों में ऊर्जा आ रही है, ताकत आ रही है, बीमारियों से मुक्त हो रहा है, मानसिक बीमारियों से मुक्त हो रहा हूं। अपने आप को खुद हीलिंग करना। इसलिए संसार में कोई लोग तो क्या करते हैं, दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल हीलिंग ही करते हैं, ऐसे रेकी जिसको कहा जाता है। तो हीलिंग योगा, इसलिए केवल सूर्य के भाई बहन क्लास में कहते हैं ना, अपने आप को हाथों के यहां घुटनों पर रख दो, है ना, यहां आत्मा पर रख दो, वहां सबके सामने रखना, सूक्ष्म रूप से यहां रख दो जैसे मैं हील हो रही हूं। तो हीलिंग योगा। नेक्स्ट है इनर पीस योगा। बैठ जाओ, जैसे मैं शांति से भरती जा रही हूं एक ही संकल्प में, वो शांति का सागर अवतरित हुआ और सीधा मुझ में शांति भरती जा रही है, 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 उसको देखना बार बार, और मैं आत्मा शांति से भरपूर होगी। आसपास जैसे सन्नाटा समा गया है, सब जैसे स्थिर हो गए हैं उस शांति की शक्ति में, एकदम जैसे समा गए हैं। तीन दिन पहले वरदान था मुरली का, शांति से संबंधित, कौन सा था, शांति की शक्ति से ही डैश 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 डैश। बाबा ने कहा शांति की शक्ति से ही सर्वशक्तियां निकलती हैं, ये साइंस की शक्ति भी शांति की शक्ति से निकली है। तो शांति की शक्ति में सारी शक्तियां समाती जा रही हैं। तो इनर पीस योगा। नेक्स्ट है जिगजैग योगा। जिगजैग योगा अर्थात ड्रिल करनी, जैसे बताया अभी अभी परमधाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी ज्ञान सोवर, अभी अभी सेंटरों पर, अभी अभी शांति स्तंभ, अभी अभी बाबा का कमरा, क्योंकि मन को भटकने की आदत पड़ी हुई है, तो भटकाना तो ऐसे भटकाने का उसको, जहां एनर्जी वाले स्थान है, जहां शक्तिशाली वाइब्रेशन वाले स्थान है, तो अपने आप को उससे भर लेना है, ड्रिल करनी है। जरूरी नहीं बाबा ने जो ड्रिल बताई है भाई, अपने अनुसार ड्रिल क्रिएट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है कर्मयोगा। कर्म करते हुए हमारा योग लगा रहे, क्या सोचेंगे उसमें, ओह मैं कितना सौभाग्यशाली आत्मा हूँ कि स्वयं भगवान ने मुझे अपने कार्य में मददगार बनाया है, कि हम भगवान के मददगार हैं। कितनी बड़ी बात है ये कि उसने हमें चुना कि ये बच्चे मेरी मदद कर सकते हैं, यही बच्चे संसार की नैया को पार लगाने वाले हैं, यही सच्ची सेवा कर सकते हैं, यही निष्काम भाव से सेवा कर सकते हैं, यही अथक बनकर सेवा कर सकते हैं, यही सच्चे सेवाधारी हैं। इनकी सेवा से दूसरों का कल्याण होगा, इनकी सेवा से दूसरी आत्माएं पवित्र बनेगी, इनकी सेवा से दूसरी आत्माओं का उद्धार होगा। तो कर्मयोग, तो कर्म करते करते हमको विचारों को बढ़ाना है। नेक्स्ट है लविंग योगा, बाबा को बहुत प्यार करना है। कैसे प्यार करेंगे? ओह बाबा आप कितने मीठे हो, आप जैसा प्यारा इस संसार में कोई नहीं है, और प्यारा बनने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते जितना न्यारा बनेंगे उतना प्यारा बनेंगे, जितना हम इस देह से डिटैच होने का अभ्यास करते रहेंगे तो बाबा के प्यार का अनुभव निरंतर होता रहेगा। अगर हम देह की स्मृतियों में रहते हैं तो देह के संबंध ही हमारी मन बुद्धि में विचरण करते रहते हैं, वो ही घूमते रहते हैं, उनकी एनर्जी देह इस आत्मा में समाती जाती है। तो जितना देह से डिटैच होंगे उतना ही बाबा के प्यार का अनुभव होगा, वो प्यार की बरसात, वो परमात्म प्यार जिसको पाने के लिए संसार तरस रहा है, एकदम कितना प्यासा है वो, और उस परमात्म प्यार से हम भरे हुए हैं, निरंतर भरे हुए हैं, उस परमात्म प्यार की बरसात हुई है, उस परमात्म प्यार के सागर में हम डूबे हुए हैं, उस परमात्म प्यार का स्वाद हम बच्चों को पता है, उस परमात्म प्यार का क्या सुख होता है वो हम बच्चों को पता है। तो लविंग योगा, लव से प्यार से संबंधित प्यार के शब्दों को अलग अलग शब्दों में बांध देना है। नेक्स्ट है मौन, साइलेंस, कुछ नहीं है तो खाली साइलेंस में बैठ जाओ, केवल अपने आप को देखते रहो, मस्तक में देखते रहो अपने आप को मौन में बस। और वो दूसरे वाला मौन नहीं, वो भी जरूरी है वैसे, लेकिन वो वाला मौन नहीं बैज लगाया हुआ है साइलेंस का, और कोई जरूरी बात पूछ रहा है और हम उसको बोले उसका कोई फायदा नहीं है। कई बार ऐसे होता है ट्रांसपोर्ट में कोई माताएं आती बहनें आती हैं, साइलेंस बैग लगाया हो तो वो लिख कर दे रही हैं, चलो ठीक है वो, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले या कोई दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट वाले जिनको उनका उतना टाइम ही नहीं है, जो बात आप बोल के एक मिनट में बता उसको लिखने में 10 मिनट लगा रहे हैं। तो हमको थोड़ा कॉमन सेंस भी चाहिए कि कहां मौन रहना है कहां मौन नहीं रहना है। तो मौन, साइलेंस योगा। नेक्स्ट है नो टेंशन योगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, नहीं तो योग की टेंशन होती रहती है सबको, भागते भागते कहां जा रहे, योग में जा रहे, अरे योग में चलो ना मजा लो उसका, वो योग की टेंशन पड़ी है, योग का हमारा टाइम ही निकल गया यही टेंशन हो गई है, और जहां बैठे वहीं योग का मजा लो। हाँ टाइम में अपने आप को बांधना वो भी ठीक है, लेकिन कई बार घर में मेहमान आ गए तो टेंशन होगी, अरे हमारा तो योग का काम ही चला गया, कोई सेवा आ गई तो टेंशन होगी। तो नो टेंशन योगा करना है, ये सब को टेंशन करने से मुक्त करने वाला योग है, और इसी योग से हम टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, अनेक प्रकार की टेंशन लेते रहते हैं, तो नो टेंशन योगा। नेक्स्ट है ओके योगा, ऑलवेज ओके, बाबा जो है, बाबा ने कहा जो हो जैसे हो तुम मेरे हो, तो हमेशा बाबा ने कहा चार्ट में लिखो ओके या नॉट ओके, तो मैं हमेशा ओके हूँ। जो हम अपने मन को विचार देते हैं मन उसको ग्रहण कर लेता है, तो हमेशा ये अपने आप को, लेकिन दूसरी तरफ से हल्के में लेके मैं ठीक है ओके तो ओके हूँ, नहीं ओके के लिए वैसे पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो ओके अर्थात बाबा मैं आपकी श्रीमत अनुसार चलता हूँ, सारे दिन में मैं कोई अवज्ञा नहीं करता हूँ। कल बताया था मुरली में 3 बातें, कौन कौन सी, अवज्ञा और 3 बातें, अवज्ञा और भक्ति, तीसरा अहंकार। तो सारे दिन में अवज्ञा कहाँ कहाँ होती, बाबा आज मैंने कोई अवज्ञा नहीं की, मैं ओके हूँ, आई एम ओके। नहीं ओके हो तो लिखो कहाँ टूटी, कल ना टूटनी चाहिए वो, तो ओके होगा। नेक्स्ट है पश्चाताप योगा, पश्चाताप भी जरूरी है, पूरा सरेंडर हो जाना भगवान के आगे, बाबा जो भी मेरे से विकर्म हुए, जाने अनजाने से बीकी लाइफ में भी जो भी कर्म हुए, आज से मैं माफ़ी मांगता हूँ, सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आंसू बहा देने बाबा के आगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पश्चाताप हुआ है। अब बाबा जो हूँ जैसा हूँ मैं आपका हूँ, वो दिल से पश्चाताप होना चाहिए। अगर स्वयं का पश्चाताप नहीं है तो वो पश्चाताप से धीरे धीरे हमारी आते हैं ऐसी पक्की हो जाती हैं कि हमको महसूसता की शक्ति मर जाती है हमारी, और विकर्म करते करते विकर्मों का पहाड़ खड़ा हो जाता है, उसके तले हम दबते जाते हैं। फिर जिसने कोई बोला चलो घूमने, ठीक है चलो, फिर एक से दो वाले हो जाते हैं, दो से तीन, तीन से चार, खेलना चलो, चलो खेलने, हमारी रियलाइजेशन पावर ही खत्म हो जाती है कि जिस काम के लिए हमको भगवान ने चुना उसको हम दरकिनार करके करते हुए वो साधारणता में जीवन जी रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे हर कर्म में साधारणता में भी महानता दिखाई दे। कब बोला था? कल की मुरली में, संडे, माताओं को बोला था ना। तो हाँ, कर्म कितना भी साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, ऊंची स्थिति हो, कल्याणकारी स्थिति हो, उड़ती कला की स्थिति हो, कितने प्रकार की स्थिति हो उसको लिखो, चिंतन करो। तो कौन सा योग बताया? पश्चाताप। नेक्स्ट है प्रश्नात्मक योग, अपने आप से पूछना हूं मैं कौन हूं, क्या मैं ये हूं? ये तो मुझे पहले भी पता था लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है, ये तो मुझे केवल सेवा का माध्यम मिला हुआ, मैं हूं कौन आकर? तो याद आएगा मुझे स्वयं भगवान ने क्या बताया है, तुम इस संसार की सबसे महान आत्मा हो, तुम इस संसार के लिए ज्ञान सूर्य का काम करने वाली आत्मा हो, तुम पूर्वज हो, तुम लाइट हाउस माइट हाउस हो, ज्ञान की रोशनी से सबके जीवन को रोशन करने वाली हो। तो स्वयं के नए नए सोमान जागृत होंगे। जरूरी नहीं है कि जो सोमान मुरली में वो ही एकदम उसी डर्रे पर चलते रहना है, एक नई परंपराएं क्रिएट करनी है जिससे हमारे पुरुषार्थ में नवीनता है, ऊर्जा भरे, शक्ति भरे, कुछ तो आगे बढ़े हम, नहीं तो वहीं के वहीं खड़े अनुभव करते रहेंगे। नया रास्ता निर्माण करना है, वो तो बाबा ने एग्जाम्पल दिए हैं सारे, लेकिन करना तो खुद है। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल दिया होता है। अब 10 क्वेश्चन तो अपने आप को हल करने हैं ना, तो बाबा ने तो मुरली में क्वेश्चन थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन आगे जीवन शैली में, कर्म क्षेत्र में, इतनी लाइफ में जो हम चलते हैं उसमें हमको नया रास्ता खुद निर्माण करना है। जो हम खुद रास्ता निर्माण करते हैं उस चलने पर खुशी होती है, जो दूसरे के रास्ते पर चलते हैं उतनी खुशी नहीं होती है। जैसे दशरथ मांझी, झारखंड, झारखंड में थे ना दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ खोद डाला, नया रास्ता निर्माण कर दिया। तो ऐसे ही हमको पुरुषार्थ के नए नए रास्ते खुद ही तैयार करने हैं। तो कौन सा योगा था ये? प्रश्नात्मक योगा। क्यों कैसे? बाबा ने कहा ये क्यों कैसे ही हमको ऊपर उठाते हैं, क्यों कैसे ही नीचे गिराते हैं। नेक्स्ट है रियलाइजेशन योगा, रियलाइज करना है अपने आप को, हु एम आई। केवल सीधा इस पर नहीं चले जाओ मैं आत्मा हूं, नहीं, कुछ नया सोमान क्रिएट करो। तो क्या रियलाइज करेंगे? मैं ब्राह्मण चोटी हूं, ब्राह्मण के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या उस कर्तव्य के अनुसार अनुरूप मेरी जीवनचर्या है, मेरी दिनचर्या है। रियलाइज करना अपने आप को, मैं सच्चा ब्राह्मण हूं, सच्चा बीके हूं, या मेरी आदतें अभी भी शूद्रों वाली जैसी हैं, क्या जो ब्राह्मणों के नियम मर्यादाएं उनके अनुसार मेरी जीवन शैली है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है संबंधों से बाबा को याद करना। कितने संबंध है? एक है ऊपर ऊपर से हम याद कर लेते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु, सखा, दोस्त, बंधु, माता पिता, ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर लिखो आप संबंधों से बाबा को याद कैसे करें। संबंधों से कैसे उसका अनुभव करें। नेक्स्ट है तपस्या, गहरी तपस्या करनी है, तपस्या को बढ़ाना है। तपस्या किस तरीके से करें हम, जो हमारा सहज नेचर नेचर हो जाए। तपस्या के व्यापारे बढ़ना है, ब्रह्मा बाबा ने तपस्या कैसे की, दादी ने तपस्या कैसे की। हम एक्चुअली बाबा के और दादियों को उन बातों को पकड़ते हैं जो हमारी सुविधा के लिए होती है, उन बातों को हम छोड़ते हैं जिन जो तपस्या उन्होंने की उस तपस्या के बारे में भी नहीं देखेंगे। अगर किसी के वो खेलने से हम रोकेंगे तो बोलेंगे बाबा भी तो खेलते थे ना, अरे बाबा की जैसी तपस्या हम कर रहे हैं। बोले पिकनिक दादी में तो करती थी ना, दादी जैसी तपस्या हमारी है। उन बातों को हम पकड़ते हैं जिन बातों से हमारी सुरक्षा होती है, इसलिए तुम्हारा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए तुम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या उनके जीवन के जैसा त्याग हमारे जीवन में है? जो वो अभावों वाला जीवन जिए वो हमारा जीवन है? इतने बड़े बड़े घरों की दादियां पूरे शान शौकत से रहते हुए राशि ठाट सब त्याग दिया, क्या हमारी जीवन शैली में वो है? तो देखना है, वो कंपैरिजन करना है। अगर ट्रिक कंपैरिजन करना है तो उस तरीके से करना है। ऐसी तपस्या हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है उत्सव। ये तपस्या एक उत्सव, बाबा कहते हैं योग क्या उत्सव है, मौज मनानी है बाबा के साथ। और उस समय क्या क्या होता है? हमेशा खुशी होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति आती है, उसमें नवीनता आती है। नेक्स्ट है विक्ट्री। सदा हमेशा अपने आप को विजय का तिलक लगाना। बाबा ने कहा तुम कल्प कल्प के विजयी बच्चे हो, भगवान के बच्चे विजयी ना हो ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। विजय का तिलक रोज अपने आप को देना है, सम्मान का तिलक देना है, प्रदानों का तिलक देना है, सफलता का तिलक देना है। अकाल तख्त पर बैठे रहना है, अपने आसन को छोड़ना नहीं। आसन को हम जब छोड़ते हैं तभी हम दुखी होते हैं। नेक्स्ट है वॉकिंग योगा, चलते फिरते। जब भी हम चलते हैं हम सवेरे देखते हैं एक बहन जी है वहां से कुटिया से लेकर वहां तक भंडारे तक ऐसे चक्कर मारते रहते हैं और लगता है जैसे पूरा फरिश्ता बनकर चल रहे हैं। चाल से भी पता पड़ जाता है कौन व्यक्ति किस चाल से चल रहा हुआ, अगर हमारी बुद्धि क्लियर है तो। नहीं तो हम दूसरी स्मृतियों से खोए रहते हैं, दूसरी स्मृतियों से दूसरों को देखते रहते हैं। नेक्स्ट है योग बल जमा करना। बल कैसे जमा करें उसके लिए खुद सोचना। और लास्ट में है जील एंड एंथुसिज्म अर्थात उमंग उत्साह वाला योगा। तो ये ए टू जेड योगा थे। ए से आह्वान करना है, बी से ब्लेसिंग योगा, वाथिंग योगा, बॉडी लेस योगा, सी से चर्निंग योगा, डी से डेथ योगा, ई से ईटिंग योगा, एफ से फरिश्ता योगा, जी से ज्वालामुखी योगा, के से एफ जी एच आई, आई से इनर पीस, के से कर्म योगा, एल से लविंग योगा, एम से मौन, एन से क्या बताया, नो प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन। प्रॉब्लम तो आएगी आएगी लेकिन वो प्रॉब्लम ही मजे वाली हो जाए, नो टेंशन। ओ से ओके, पी से पश्चाताप, के ओ से प्रश्नात्मक, आर से रियलाइजेशन, एस से संबंध, टी से तपस्या, यू से उत्सव ऊर्जा संरक्षण करनी है, और वी से विक्ट्री, वाई से योग बल जमा करना है, और जेड से हमेशा उमंग सा में उड़ते रहना उड़ाते रहना। ओम शांति।